सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए जिन महापुरुषों से हमने विद्या प्राप्त की है, ऐसे महापुरुषों का विस्मरण करते हुए और यह संस्था परोपकारार्थ संस्थापित हुई है, ऐसे अर्चनीय वंदनीय महापुरुष के चरणों में भी प्रणाम करते हुए वेदांत की चर्चा स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सच्चित आनंद लक्षित निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म तत्व ही सत्य है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक वा द्वितीयम् यह वेदांत का सिद्धांत है। पहले आप लोगों के लिए भूमिका बता रहे हैं। तो पहले आप लोगों को बतला देते हैं, जैसे कहीं आपको यात्रा करनी हो, बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, तो वहां पर हेलीकॉप्टर से भी जाने की व्यवस्था है और टैक्सी से भी जाने की व्यवस्था है। तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो मार्ग में जो दृश्य है उसका आप दर्शन ठीक से नहीं कर सकते, और टैक्सी से जाएंगे अथवा पैदल जाएंगे तो मनोरम दृश्य का भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए कैसी यात्रा करनी है, तो ये भी यात्रा है, स्वाध्याय है। तो कौन सी यात्रा करनी है, हेलीकॉप्टर से कि टैक्सी से, पैदल? इसलिए मेरी शैली जो है हेलीकॉप्टर की नहीं होती है और करना भी नहीं आता है। और ये भी बतला देता हूं, मैं कोई कथाकार नहीं हूं, ना मेरे पास लोगों को विनोद करने की शैली है, अपितु वास्तविक जो वेदांत की चर्चा होनी चाहिए ऐसी चर्चा करने का ही प्रयत्न करता हूं और करवाता हूं। तो आपकी तरह मैं एक साधक ही हूं, तो यही अध्ययन अध्यापन करना ही अपना कर्तव्य है, अपनी प्रवृत्ति है। तो साधना सदन आश्रम में यही कराता हूं, तो वहां पर भी जैसी शैली है हमारी ऐसी ही यहां पर करेंगे। तो अभी आप लोगों को बतला दिया कि सच्चित आनंद लक्षित एक लक्षित होता है, एक वाच्य होता है। तो वेदांत जिस ब्रह्म को बतलाता है वो लक्षित है, वो वाच्यार्थ नहीं है। इसलिए इस शब्द का मैंने आपको प्रयोग किया कि सच्चित आनंद लक्षित। लक्षणावृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसको कहते हैं लक्षित, और शक्ति वृत्ति से जिसका बोध होता है जिस अर्थ का उसको कहते हैं वाच्य, अथवा शक्यार्थ भी कहते हैं। तो धीरे धीरे एक दो दिन के बाद हमारी शैली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो सच्चित आनंद शब्द से लक्षित निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म ही तत्व है। तत्व शब्द का अर्थ होता है सत्य, अबाधित, यथार्थ। तत्त्वम ब्रह्मणि यथार्थे अमरकोश में आता है, तत्त्वम ब्रह्मणि यथार्थे। तत्त्व शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म अथवा यथार्थ। वेदांत में जो यथार्थ है वही ब्रह्म है। तो यही वेदांत का सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्धश्चासौ अंतः सिद्धांतः। सिद्ध का अर्थ होता है निर्णित, निर्णय किया गया हो। श्रुति श्रुतिमूलक प्रमाण के द्वारा जो निर्णित हो गया अर्थ उसी को कहते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत का अर्थ हो गया निर्णितार्थ। तो ये जो सच्चित आनंद शब्द लक्षित ब्रह्म वेदांत का सिद्धांत है, इसी का निरूपण करने के लिए श्रुति प्रमाण के द्वारा श्रुति अनुकूल युक्ति के द्वारा, युक्ति मतलब तर्क, तर्क भी दो प्रकार का होता है, एक कुतर्क एक सुतर्क समझ लो। तो श्रुति मूलक तर्क को कहते हैं सुतर्क। तो यही जो एक व द्वितीयम है ब्रह्म, और यही जीव का स्वरूप है। जीव ब्रह्म है वो ना पर, लेकिन जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है कि शोधित जो जीव तत्व होता है, शोधित उपाधि में मिथ्यात्व का निश्चय करने पर जो अवशिष्ट रहता है उसको कहते हैं शोधित जीव तत्व। तो शोधित जीव तत्व ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। इसी को निरूपण करने के लिए स्वामी विद्यारण्य मुनि ने ये पंचदशी ग्रंथ को प्रारंभ किया। तो पंचदशी नाम क्यों पड़ गया? इसमें 15 प्रकरण है। प्रकरण पंचदशानाम प्रकरणानाम समाहार पंचदशी। अथवा ऐसा समझ लो 15 प्रकरण में ब्रह्म विद्या ही प्रतिपादित है, इसलिए 15 प्रकरण प्रतिपादित ब्रह्म विद्या का नाम यहां पर पंचदशी है। जैसे उपनिषद, उपनिषद किसका नाम होता है? ग्रंथ का नाम होता है कि विद्या का नाम होता है? दोनों का होता है, है ना? हाँ, दोनों का होता है। मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या, मुख्यार्थ उपनिषद का, और ब्रह्म विद्या हो गया प्रमा, यथार्थ ज्ञान, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा यथार्थ ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रमाण, प्रमाण। वो प्रमाण है शब्द। ग्रंथ से होगा कि शब्द से ज्ञान होगा? ग्रंथ तो पढ़ी है, शब्द से होता है। इसलिए जो आप श्रवण करते हैं, है ना, शब्द को श्रवण करते हैं, अर्थ का श्रवण नहीं होता है, शब्द का होता है। अयम घट, तो घट शब्द को सुना आपने, अर्थ को नहीं सुना। इसलिए शब्द प्रमाण को भी उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म विद्या का साधन होने से, प्रमाण होने से। ये गौण अर्थ हो गया। शब्दात्मक जो है ग्रंथ, ये हो गया गौण उपनिषद का गौण अर्थ। मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या। और ये जो लिपि है, अब देख रहे लिपि को, देख रहे तो लिपि को पढ़ेंगे, हम बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, तो लिपि को भी उपनिषद बोल देते। देखो तीन अर्थ हो गए कि नहीं? उपनिषद के तीन अर्थ हो गए, दो अर्थ गौण हो गया, शब्द और लिपि, और मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या उपनिषद का, है ना? और ये भी समझ लो कि उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है मुख्य रूप से, है ना? इसलिए वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत सार के रचयिता आचार्य सदानंद जी वो लिखते हैं। तो उपनिषद 1180 है, जितनी शाखा है वेद में उतनी उपनिषद है, उसको वेदांत कहा गया, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। लेकिन बाकी जितने भी है, भाष्य है, उसकी टीकाएं है, और ये भी ग्रंथ है, है ना, ये व्याख्यान है उसका, उसका स्पष्टीकरण है, इसलिए इसी को ही वेदांत बोल देते हैं। इसलिए दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक होता है शास्त्रात्मक ग्रंथ और एक होता है प्रकरणात्मक ग्रंथ। शास्त्र हो गया, दूसरा प्रकरण हो गया। शास्त्र वेद को ही कहा जाता है, शास्त्र शब्द से वेद को ही लिया जाता है। क्यों? जिसमें सभी साधनों का प्रतिपादन है, एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, ये शास्त्र का लक्षण होता है। एक प्रयोजन उपनिबद्धम, एकस्मै प्रयोजनाय उपनिबद्धम निर्मितम ईश्वर उच्चरितम, ईश्वर से उच्चरित होता है, बनाने जाता है। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पूर्व कल्प, अभी जैसा मंत्रों की अनुपूर्वी है ना, गणानंत गणपति को, ऐसी वर्णों की अनुपूर्वी पूर्व कल्प में था। क्रम ग अण गणा, ग के बाद अणा, उसके बाद गणपति गुम आया। ऐसे नहीं कि गणपति गुम पहले पहले था पूर्व कल्प में, ऐसा नहीं है ना। तो एक प्रयोजन उपनिबद्धम, एक ही प्रयोजन है मोक्ष, उसी के लिए वेदांत होता है ना। पहले आप लोगों को बतला दिया, देखो हमारी जो है ना वो धीमी गति की गाड़ी है इसलिए बोर नहीं होना। तो और अशेषार्थ प्रतिपादकम, जितने भी साधन है सबका प्रतिपादन जिस ग्रंथ में हुआ है उसको कहते हैं शास्त्र। तो ज्ञान हो गया मोक्ष साधन, ज्ञान ही साधन है मोक्ष का। और ज्ञान जिससे होगा, ज्ञान के भी साधन श्रवण मनन निध्यासन, ये हो गया अंतरंग साधन, श्रेष्ठ साधन। बाकी जो है कर्म है, उपासना है, यम नियम आसन प्राणायाम, जितने भी अष्टांग योग है, ये सब क्या है, बहिरंग साधन, बहिरंग साधन। और सबका प्रतिपादन है वेद, इसलिए वेद को कहा जाएगा शास्त्र। और उसमें से किसी एक भाग का निर्णय किया गया हो, विचार किया गया हो जिस ग्रंथ में, उसको कहेंगे प्रकरण, प्रकरण कहेंगे। शास्त्रीक देश संबद्धम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, प्रकरणाम ग्रंथ भेदम आहुर विपश्चित। हाँ, एक ज्ञान का हो, कर्म का हो, उपासना का हो, हाँ उसको कहेंगे प्रकरण। न तो गीता में भी तीनों का प्रतिपादन है, श्रीमद् भगवद गीता में है ना, कर्म का है, भक्ति का है और ज्ञान का है। इसलिए गीता शास्त्रम इदम पुण्यम कहा गया है कि नहीं, गीता महात्मा में तीनों का है। लेकिन यहां पर जो है तीनों का नहीं है, ज्ञान का है, इसमें ज्ञान का प्रतिपादन किया गया। ज्ञानात एव तु कैवल्य, ज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसका ज्ञान है भाई, तब जिसके ज्ञान से होगा मोक्ष उसका ज्ञान है कि नहीं। तो किसका ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान कि किसका ज्ञान, केवल ब्रह्म का ज्ञान नहीं समझना है यहां पर है ना। ब्रह्मात्म एक्य ज्ञान है ना, ब्रह्मात्मा एक्य मतलब ब्रह्म चासौ आत्म, ब्रह्म एव आत्मा ये समझ लो, ब्रह्म ही आत्मा है ना। तो मेरा स्वरूप ब्रह्म ही है, इसको कहते हैं ब्रह्मात्मा एक्य ज्ञान। लेकिन ये तो भाई अहम सुखी अहम दुखी, ये ब्रह्म कैसे होगा, तो अभी आप लोगों को बतला दिया, शोधित जीव तत्व, शोधित जीव तत्व, शोधित जीव तत्व का एकत्व ब्रह्म के साथ हो जाता है ना। तो इसी का निरूपण जो है स्वामी विद्यारण्य मुनि करने जा रहे हैं। तो मेरा ये विचार है कि इतना सरल ढंग से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ वेदांत में और कोई नहीं है। इसलिए प्रकरण ग्रंथों में ज्यादा प्रचलन इसी ग्रंथ का है, स्वामी विद्यारण्य मुनि का, है ना। तो अब कूटस्थ दीप प्रकरण का विचार करने जा रहे, प्रारंभ हुआ है। तो इसके रचयिता कौन है जी, एक है कि दो है, है ना? गुरु है और चला है, गुरु है चला है। इसलिए यहां पर जो है स्वामी विद्यारण्य महाराज ये गुरु का मंगलाचरण किया है। पहले पढ़ लेते हैं मंगलाचरण, प्रारंभ तो करेंगे कूटस्थ दीप से। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। देखो जी, 15 प्रकरण है ना, 15 प्रकरण हो गए। इसको 3 भाग कर लो तो एक भाग में कितने होंगे, 5 हो जाएंगे ना, है ना। तो प्रथम भाग में 5 प्रकरण है, तो इसको क्या नाम देंगे, विवेक पंचक, है ना, विवेक पंचक हो गया। और द्वितीय भाग में भी 5 है, उसका नाम क्या देंगे, दीप पंचक, दीप पंचक, है ना। और तृतीय भाग का नाम क्या है, आनंद पंचक, आनंद पंचक। तो इनके गुरु है स्वामी भारती तीर्थ महाराज, विद्यारण्य मुनि के स्वामी भारती तीर्थ। तो सबसे पहले चेले ने प्रारंभ किया, स्वामी विद्यारण्य ने प्रारंभ किया। तो किसी कारण से ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, फिर पूरा किसने किया, पूरा तो गुरु ही करता है ना। एक नाम किसका हो रहा है, गुरु का हो रहा है कि चेले का हो रहा है, है ना, चेले का शिष्य का हो रहा है, यही गुरु का गुरुत्व है। देखो चेले का नाम पड़ेगी अगर रचयिता के नाम से, स्वामी विद्यारण्य मुनि का ग्रंथ करते हैं तो। ऐसी मान्यता है, परंपरा है, कुछ लोग बोलते हैं कि 10 प्रकरण जो है स्वामी विद्यारण्य मुनि ने पूरा किया। अब आगे का जो 5 प्रकरण है उनके गुरुजी ने किया, एक मान्यता है। लेकिन रामकृष्ण टीकाकार महाराज तो उन्हीं के अनुसार 6 प्रकरण जो है चित्रदीप पर्यंत ये चेले ने किया स्वामी विद्यारण्य मुनि ने। और तृप्तिदीप प्रकरण से प्रारंभ सप्तम से ये किसने किया, गुरु जी ने किया, ये रामकृष्ण टीकाकार के अनुसार बता रहा आपको। और रामकृष्ण महाराज जो है उनके बारे में परिचय नहीं मिलता है, है ना? वो गृहस्थ थे कि ब्रह्मचारी थे कि सन्यासी थे, वानप्रस्थ, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और कहां के थे ये भी नहीं मिलता है, बड़ा विलक्षण मूर्ति है। लेकिन एक उत्कट विद्वान थे और स्वामी विद्यारण्य मुनि स्वामी भारत तीर्थ का जगह जगह पर नमस्कार किए हैं मंगलाचरण में, है ना? इसलिए उत्तम साधक भी थे, अनुकरणीय थे महापुरुष रामकृष्ण टीकाकार। तो देखो जी, जीव का स्वरूप ब्रह्म है ना, लेकिन अनुभूति नहीं हो पा रही है, तो क्या करें? तो यहां पर एक प्रक्रिया बता रहे, और इसकी एक विशेषता है स्वामी विदर्ण मुनि की, देखो बताते हैं। तो जिसके ज्ञान से मोक्ष होगा उसी का निरूपण करना चाहिए ना, प्रारंभ तो उसी का करना चाहिए। तो ब्रह्म के ज्ञान से, लेकिन ब्रह्म का निरूपण करना चाहिए भी, तो उपक्रम में ब्रह्म का किया क्या? नहीं किया है ना। तो कहां से प्रारंभ किया मालूम है ना आपको, ज्ञान का निरूपण किया सबसे पहले संवित प्रथम प्रकरण में, जो तत्व विवेक प्रकरण है ना, तो तत्व तो ब्रह्म है, तत्व तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म का निरूपण नहीं किया, संवित ज्ञान का निरूपण किया। भाई ऐसा क्यों किया, इसका भी तात्पर्य यहां पर। तात्पर्य क्या है, जो प्रक्रिया सरल है ना उसको अपनाना चाहिए है ना, ये बुद्धिमत्ता है बुद्धिमान की। तो ब्रह्म में आत्मा में, आत्मा के विषय में ज्यादा मत मतांतर है, कोई ब्रह्म को मानता है कोई नहीं मानता है ना, कोई अपना स्वरूप ब्रह्म है ऐसा मानता है कोई नहीं मानता है। यदि यद्यपि आत्मा का स्वरूप ब्रह्म हो तो निर्गुण के साथ नहीं हो सकता है, सगुण के साथ होगा, ऐसा भी है, विशिष्ट अद्वैत आ गया। कोई लोग तो ब्रह्म को ये मानते नहीं है, तो ब्रह्म अच्छा मानने पर भी, आत्मा को मानने पर भी कोई मन को मानता है, कोई बुद्धि को मानता है, कोई इंद्रियों को मानता है, कोई शरीर को मानता है, हाँ, कोई क्षणिक विज्ञान को मानता है, सर्वम शून्यम शून्यम शून्य को मानता है। तो आत्मा के विषय में ज्यादा मत मतांतर है, लेकिन ज्ञान के विषय में ज्यादा मत मतांतर नहीं है। कोई ब्रह्म को माने या ना माने है ना, वेद को माने या ना माने, ज्ञान को जरूर मानेगा। ज्ञान के बिना आप व्यवहार ही नहीं कर सकते, व्यवहार का अपलाभ हो जाएगा ज्ञान के बिना। इसलिए संवित जो ज्ञान है वहीं से प्रारंभ किया, देखो स्वामी विदर्ण मुनि ने संवित ज्ञान। तो सबसे पहले संवित जो ज्ञान है उसमें नित्यत्व सिद्ध किया स्वामी विदर्ण मुनि ने, ज्ञान नित्य है और अबाधित है, उसका बाद नहीं होता है। जागृत का विषय स्वप्न में बाधित हो जाता है, स्वप्न का जागृत में हो जाता है, जागृत स्वप्न का सुसुप्ति में हो जाता है, समाधि में हो जाता है। और इसकी जो वृत्ति है घटाकार पटाकार वृत्ति, इसका भी बाध हो जाता है। अयम घटः अभी घटाकार वृत्ति हो रही है, उसके बाद इदम पुस्तकम पुस्तकाकार वृत्ति हो रही है, तो घटाकार वृत्ति के समय पटाकार वृत्ति बाधित हो गई, समझे ना। लेकिन घटाकार वृत्ति को जो जानने वाला है प्रकाश सब, उसी को यहां पर संवित सब से लेते हैं, समझे ना, वो बाधित नहीं होता है। तो घटाकार वृत्ति को भी जानने वाला है, जानने वाला प्रकाशित करने वाला, पटाकार वृत्ति को भी प्रकाशित करने वाला वही है। और सुसुप्ति में जाएंगे तो अविद्या की वृत्ति हो रही है, अविद्या की वृत्ति हो रही है, उसको ही प्रकाशित करने वाला वही संवित है। तो एक हो गया अबाधित, बाकी जितने भी है वृत्ति वृत्ति का विषय सब बाधित है। तो ऐसा एक दिन में जैसा हो रहा है, अन्य दिन में, मास में भी होगा, वर्ष में होगा, कल्प में भी होगा। तो ज्ञान में सबसे पहले नित्यत्व को सिद्ध किया और एक ही एकत्व को सिद्ध किया, सत चित, देखो दो हो गया ना, जो चित है वो सत्य है। अच्छा, वो जो है जिसका स्वरूप चित है ऐसा सत्य आत्मा है, ये अष्टम श्लोक में बताया तत्व विवेक प्रकरण, वहीं से प्रारंभ किया, ध्यान में रखे, ये उपक्रम हो गया है ना। तो ये ज्ञान आत्मा है, यम संबित आत्मा, रामकृष्ण टीकाकरण ने कहा वहां पर अष्टम श्लोक में, क्यों नित्यत्व सति सम प्रकाशत्वात्, वो नित्य होकर के सम प्रकाश है, इसलिए वो आत्मा है। कौन आत्मा है? संबित जो है, अवाधित जो चित है, संबित कुटस्थ चित, वो आत्मा है। क्यों? नित्य होकर के स्वयं प्रकाश है। दृष्टांत मिलेगा नहीं, अन्य दृष्टांत व्यतिरिक्त दृष्टांत मिलेगा, घटपटादी। जो आत्मा नहीं है वो नित्य होकर के स्वयं प्रकाश भी नहीं होगा। यन्नैव तन्नैव यथा घटः। तो देखो आत्मा में क्या सिद्ध हुआ? सत्यत्व सिद्ध हुआ और चैतन्य सिद्ध हो गया, और क्या बाकी रहा? आनंद बाकी रहा, है ना। तो वही आत्मा का स्वरूप बोल दिया आनंद, जिसका स्वरूप सत्य चित हो, ऐसा जो आत्मा है उसको क्या बोल दिया? आनंद बोल दिया। कहां पर? अष्टम श्लोक में देखिएगा, तत्व विवेक प्रकरण में, यम आत्मा परानंद। केवल आनंद नहीं बोला, परानंद बोला। आनंद और परानंद में एक सुखाकार वृत्ति होती है, उसको तो सुख, उसको आनंद बोल देते हैं, और विचार करने वाले व्यक्ति, इससे भी अतिरिक्त कोई सुख है, विषय से होने वाला जो सुख है, जो अंतकरण की वृत्ति है, यही सुख है, इससे अतिरिक्त कहां सुख है, ऐसा अविचारशील व्यक्ति बोलता है। हाँ, तो उसी को आनंद नहीं समझना चाहिए, इसलिए बोल दिया परानंद, मतलब निरतिश आनंद, बिना विषय से होने वाला आनंद, बिना वृत्ति से होने वाला आनंद को यहां पर परानंद कहा। तो आत्मा परानंद है भाई। क्यों परानंद है? ये आत्मा परानंद, पर प्रेमास्पदम यतः, हेतु दिया गया, क्योंकि परम प्रेमास्पद है, आत्मा से ही प्रेम होता है, निरतिशय प्रेम, और बाकी जितने भी है वो निरतिशय प्रेम नहीं होता है। अपने को सुख मिले है ना, आत्मनस्त कामाय पतिप्रिय होती इत्यादि अनुसार है ना। तो विषय आदि में जो सुख होता है, सामग्री साधन में जो सुख होता है, वो अपने लिए होता है, लेकिन अपने में जो सुख होता है वो किसी के लिए नहीं होता है, इसको कहेंगे परम प्रेमास्पद है ना। तो जो परानंद नहीं होगा वो परम प्रेमास्पद नहीं होगा, जैसे खटपटा आदि है, रसगुल्ला आदि है ना, वो आनंद स्वरूप नहीं है, इसलिए वो परम प्रेमास्पद नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा सुख, परम प्रेमास्पद आस्पद आश्रय विषय, प्रेम का विषय। तो यही आत्मा का स्वरूप हो गया, देखो सचित आनंद स्वरूप हो गया, जीव का स्वरूप है ये, इसका एकत्व होगा, लेकिन अनादि काल से शरीर आदि ने तादात्म अभ्यास करके अहम सुखी अहम दुखी अहम गृहस्थ इत्यादि भ्रांति हो रही है, इसलिए जिस जिसमें आत्मबुद्धि हो रही है उसे जब तक विवेक नहीं करेंगे तब तक एक महीना एक वर्ष नहीं है ना, तो जीवन नहीं अनेक जन्म बीत जाएगा, तब भी जो है वेदांत का श्रवण कर भी लेंगे तब भी ओम ब्रह्मास्मि का ज्ञान नहीं होगा है ना। इसलिए यहां पर विवेक को प्रारंभ किया, देखो विवेक को प्रारंभ किया स्वामी वेदानंद मुनि ने, तत्व विवेक प्रारंभ प्रारंभ कर दिया। और इसी का पहला प्रकरण का तत्व विवेक प्रकरण, तत्व ब्रह्म है, इससे अतिरिक्त जितने भी है अतत्व है, मिथ्या है। और इसी का व्याख्यान विस्तार मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए तो प्रथम प्रकरण बस एक ही प्रकरण में विवेक हो जाएगा, लेकिन जो मध्यम होते हैं मंद होते हैं उसके लिए और व्याख्यान करना होता है, कथा कहानी भी जोड़नी होती है ना। यहां पर कथा कहानी नहीं है, केवल बता दिया आपको दृष्टांत। इसलिए द्वितीय प्रकरण में कहा गया पंचम महाबोध विवेक, पंचम महाबोध पृथ्वी जल तेज आदि और इसके कार्य जो घटपटा दी शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सब, पंचम महाभूत और पांच भौतिक, इससे भी आत्मा का विवेक करना है। आत्मा से अनात्मा का विवेक करना है कि अनात्मा से आत्मा का करना है, यहां पर क्या किया? आत्मा से अनात्मा का विवेक किया कि अनात्मा से आत्मा का किया? नहीं, अनात्मा से आत्मा का किया। हाँ ऐसा ना, ठीक है ना, आत्मा से अनात्मा का नहीं करना, अनात्मा से आत्मा का। अनात्मा है माया और माइक पदार्थ, सब आगे देखो ये सब अनात्मा हो गए। इसलिए तृतीय प्रकरण में कह दिया पंचकोश अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय है ना, और जो है मनोमय और आनंदमय कह दिया, ये पंचकोश हो गया। ये भी आत्मा नहीं है क्योंकि व्यभिचार हो रहा है ना भाई, तो जिस जिसका व्यभिचार हो रहा है वो आत्मा कैसे होगा? देखो पहले आप लोगों को बतला देते हैं, जो वेदांत का जो वास्तविक साधक होता है ना उसका बल जो है युक्ति होती है कि श्रुति होती है भाई, क्या होती है उसका जो मुख्य बल है? हाँ, मुख्य तो श्रुति है, श्रुति को पकड़ करके रखिएगा, अपनी बुद्धि को नहीं पकड़ना है, बुद्धि तो धोखा देने वाली है ना, ऐसा समझ कर रखिएगा। इसलिए जगह जगह पर शंकराचार्य भगवान ना पहले श्रुति को दिखाते हैं, इसलिए वेदांती का बल जो है श्रुति है, उपनिषद है। हाँ ये ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार चतुर्थ बता दिया, ये विवेक हो गया। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस चार प्रकरण के द्वारा जो श्रुति और श्रुति मूलक युक्ति के द्वारा सिद्ध किया गया, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया गया, उसी को निरूपण करने के लिए महावाक्य बता दिया। युक्ति का मूल श्रुति होनी चाहिए है ना, तर्क केवल नहीं होना चाहिए, बुद्धि का बल श्रुति होनी चाहिए। तो युक्ति के द्वारा जो सिद्ध किया गया उसमें प्रमाण श्रुति भी है, इसलिए यहां पर पंचम महावाक्य विवेक प्रकरण हो गया। एक महावाक्य होता है और एक अवांतर वाक्य होता है वेदांत में। तो द्वैत भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम, इसको कहते हैं महावाक्य, द्वैत भ्रम निवर्तकम वाक्यम महावाक्यम। द्वैत का भ्रम हो रहा है, मैं जीव हूं वो ब्रह्म है ये जगत है, ये भ्रम हो गया। इसका निवर्तक जो वाक्य होगा ज्ञान का प्रतिपादन, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला वाक्य होगा, उसको कहते हैं महावाक्य है ना। और कि स्वरूप बोधकम वाक्यम अवांतर वाक्यम, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इसको कहते हैं अवांतर वाक्य। अवांतर वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अवांतर वाक्य हो गया जन्मादयस्य यतः ये अवान्तर वाक्य हो गए और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म ये हो गया महावाक्य और वो जानते हैं है ना। अच्छा हाजी स्वरूप बोधकम वाक्यम अवान्तर वाक्यम स्वरूप बोधक वाक्य। तो यदि आत्मा का स्वरूप ब्रह्म है भाई अनुभूति क्यों नहीं हो रही। अपना स्वरूप जो ब्रह्म ही है ये सारा है ना जगत ही ब्रह्म ही है सर्वम खलिदम ब्रह्म कहा गया अनुभूति होनी चाहिए भाई। वस्तु पास में हो और उसकी अनुभूति ना हो ये तो विलक्षण बात हो गई। तब कहते हैं कि अज्ञान के द्वारा ये स्वरूप जो है ना आवृत हो गया है जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद्भगवद गीता में अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेना मोहयन्ति जन्तवः। एक आवरण हो गया एक विक्षेप हो गया। देखो अज्ञान न आवृतम ज्ञानम ये आवरण हो गया अज्ञान की प्रथम शक्ति माया की शक्ति आवरण शक्ति हो गई तेना मोहयन्ति जन्तवः ये विक्षेप शक्ति हो गई। चलिए शरीर मन बुद्धि में जो है आत्मबुद्धि हो जाती है घटपटादि में सत्यत्व बुद्धि हो जाती है ना। तो इसी बात को बतलाने के लिए स्वामी विद्यानंद मुनि जो है स्पष्ट प्रकरण का नाम क्या रखा जी चित्र दीप प्रकरण का चित्र दीप चित्र दीप। जैसे पर्दे में चित्र होता है भी पर्दे में चित्र होता है वहां पर दृष्टांत बताया एक धौत यथा धौतो घटितश्च लांचितो रंजित पटः चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट चात्मा तथिर्यते। ये चित्रदीप प्रकरण का दृष्टांत बताया। देखो ये कपड़ा हो गया साफ कर दिया कपड़े को धो करके उसका नाम हो गया क्या धौत धौत वस्त्र कहेंगे साफ कर दिया सुखा दिया धौत हो गया। उसके मान लगा दिया चित्र बनाना ना मान मान चावल का जो मान होता है उसको क्या बोलेंगे घटित वस्त्र बोलेंगे घटित वस्त्र। और रेखांकित कर दिया रेखा बना दिया पेंसिल से नहीं उसको लांछित बोलेंगे लांछित। फिर रेखा बना के फिर कलर देंगे उसमें उसको कहेंगे रंजित। कितने हो गए भैया चार हो गए ना चार हो गए ध्यान में रखिएगा है ना ध्यान में रखिए। याद ना भी हो लेकिन स्मरण तो होना चाहिए कि भाई वेदांत सिद्धांत समझ में आना चाहिए श्लोक याद हो या ना हो सिद्धांत तो पकड़ में आना चाहिए है ना। और दृष्टांत क्या है चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट च आत्मा। देखो चार कह दिया चित धौत के जगह पर होगा चित कूटस्थ ब्रह्म कूटस्थ ब्रह्म ये किसके जगह पर हुआ धौत वस्त्र के होकर अधिष्ठान है ना। और घटित घटित वस्त्र के जगह पर हो गया अंतर्यामी ईश्वर माया विशिष्ट चेतन परमया। और लांछित वस्त्र के जगह पर कौन हो गया विराट हिरण्य गर्भ कहो सूत्रात्मा कहो है ना ये ले लो। और जीव जो है भाई ये रंजित वस्त्र का हो गया है ना ठीक है ना। फिर चित्र कौन हो गया फिर पर्दा कौन हो गया चित्र कौन हो गया है ना। कूटस्थ ब्रह्म हो गया पर्दा और उसमें सब चित्र ही है बस। और मैं ना इस ध्यान में रखिएगा ईश्वर भी चित्र हिरण्य गर्भ भी और जीव भी और इसका संसार भी ये सब के सब चित्र ही है। तो एक सत्य होते हैं और असत्य अनेक होते हैं पढ़ में ना एक ही होता है भाई सत्य और अनेक मिथ्या होते हैं है ना। तो देखो तो जहां पर एकत्व है ना वहां पर नानात्व है, बराबर है कि नहीं, है ना। जहां पर नाना हमको भास रहा है ना, उसमें तो एकत्व ही है। एकत्व यदि न हो तो नानात्व कहां और बसेगा। पर्जा यदि न हो चित्र कहां पर भासेंगे, तो पकड़ना है कहां पर हमको, है ना, पर्दे को पकड़ना है, चित्र को छोड़ना है। भाई छोड़ेंगे कैसे, आंख बंद करने पर छोड़ेंगे, आंख बंद करने पर ही मनोराज्य होता है। केदारनाथ जाएंगे तो चित्र दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ब्रह्मलोक जाएंगे वहां पर भी चित्र दिखेगा। चित्र कभी भी बंद नहीं होता है, है ना। जहां पर चित्र भास रहा है आप जिस समय भास रहा है उसी समय आपको विचार करना है। तो दिखाई देने पर भी चित्र वास्तविक होता नहीं है, पकड़ में है कि नहीं। तो यहां पर दृष्टांत बताया षष्ठ प्रकरण में, क्या नाम हो गया भी, चित्र दीप प्रकरण, है ना, चित्र दीप प्रकरण हो गया। अच्छा, तो ये जो चित्र दीप प्रकरण है, चित्र में मिथ्यात्व का निश्चय कर देंगे तो कुटस्थ ब्रह्म जो है उसका ज्ञान हो जाएगा, है ना। सबका जो अपलाप कर देंगे, सर्प का जो अपलाप कर देंगे मतलब बात कर देंगे, तो कौन शेष रहेगा, अधिष्ठान शेष रहेगा। उस अधिष्ठान का ज्ञान होने पर मिलेगा क्या भी, कुछ मिलना चाहिए ना। हाँ, फल यदि ना हो प्रवृत्ति काय को होगी, है ना, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो उसका प्रयोजन बता दिया, तृप्ति दे, देखो तृप्ति, ये ज्ञान का फल हो गया। तो ये आपका तृप्ति दीप प्रकरण में 294 पृष्ठ में 294 श्लोक में बताया कि ज्ञान का फल क्या है, तृप्ति, है ना। 294 बताया, धन्योहम कर्तव्यम मेन विद्यते किंचित। देखो, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति, कृतकृत्यता, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, है ना। यही क्या है, ज्ञान का फल, यही वेदांत का फल है, इससे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है। ये मान सम्मान मिलना ये सब वेदांत का फल नहीं होता है, ना कि ब्रह्मलोक जाना, ना सर्वलोक जाना, ना ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये वेदांत का फल नहीं। वेदांत का फल तो यही है, है ना। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके एक उदाहरण के रूप से लिया कि बृहदारण्यक श्रुति को, आत्मानं चित विजानीयत अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसजरेत। यहां पर ज्ञान को ही बताया और ज्ञान का फल को ही बताया, इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।